हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 130। जतिन ने जानबूझकर शिविका का नाम उसके सामने लिया, क्योंकि वो जानता था कि शायद इसी तरह वो साहिल को वहाँ रोक सकता है, क्योंकि वो शिविका के पीछे ही वहाँ आया होगा। और उसकी ये बात काम भी कर गई, क्योंकि जैसे ही साहिल को पता चला कि शिविका वहाँ नहीं है, उसने अपनी जगह पर रुकते हुए कहा, क्या सच में तुम्हारी बॉस यहाँ पर नहीं है? मुझे तो लगा था कि वो यहाँ पर ही होगी, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि वो सब कुछ खुद ही देखती है। साहिल ने वहाँ पर रुकते हुए जतिन की तरफ देखकर ये सवाल किया, तो जतिन ने कहा, हाँ मैडम, बस आनी ही वाली है, शायद 10 बजे तक वो आ जाए, क्योंकि उससे पहले उनका कोई भी काम नहीं है यहाँ पर। और आपका भी कोई काम नहीं है सर? आप बोलिए तो मैं आपका VIP रूम में बैठने का इंतज़ाम करवा देता हूँ, जतिन ने साहिल को ऑफ़र देते हुए कहा। तो साहिल थोड़ा सा सोचते हुए बोला, ओके ठीक है, मैं और मेरे साथ ये दोनों भी हैं, हम तीनों का ही बैठने का अरेंजमेंट करवाओ, जब तक मैं एक नज़र देख कर आता हूँ कि यहाँ पर काम कैसा चल रहा है, साहिल ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा। तो जतिन ने बस ओके बोला और थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गया, क्योंकि वो जिस काम के लिए उसे रोकना चाहता था वो नहीं कर पाया, इसलिए उसने अपने सिर पर हाथ मारा, उसके पीछे वहीं पर खड़े और फिर बेबसी से अपना सिर हिलाते हुए उसके बैठने का इंतज़ाम करने के लिए VIP रूम की तरफ बढ़ गया। और उसने अपने स्टाफ में एक दो लोगों को इस बारे में बता दिया कि साहिल मेहरा वहां पर आ चुका है। दूसरी तरफ करण बैकस्टेज और ग्रीन रूम के आसपास ही पहुंच गया। वहां पर उसने देखा कि हर्षिता बाकी सारी लड़कियों के साथ सब कुछ डिस्कस कर रही है कि कौन पहले जाएगा और कौन बाद में। उन्हें असिस्ट करने के लिए एक असिस्टेंट और उन्हें डायरेक्ट करने के लिए वहां पर वो कास्टिंग डायरेक्टर भी है, जो कि रुद्र का दोस्त है, और रुद्र भी वहां पर खड़ा हुआ उससे ही कुछ बातें कर रहा है। करण ने उन लोगों को बातें करते देखा और फिर वहां उस रूम के अंदर आते हुए कहा, सब कुछ ठीक है ना यहाँ पर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। करण की ये बात सुनकर उस डायरेक्टर और रुद्र दोनों का ही ध्यान करण की तरफ हुआ, और हर्षिता और उसके साथ खड़ी उन मॉडल लड़कियों ने भी करण की तरफ देखा। करण की पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और वो हमेशा इसी तरह ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता रहता है, इसलिए हर्षिता के साथ बैठी लड़कियाँ करण की तरफ देख कर बोली, वाओ, सो हैंडसम, ये मेल मॉडल है क्या? हाँ, मुझे तो वही लग रहा है, पर्सनैलिटी देखो कितनी अच्छी है इसकी, और हाइट भी, साथ ही फेशियल फीचर्स भी। उन सब लड़कियों की ऐसी बातें सुनकर हर्षिता ने उन्हें क्लियर करते हुए बताया, नहीं, वो यहाँ पर काम करता है, मेरा मतलब है शिविका मैम का असिस्टेंट है शायद। हर्षिता ने एकदम से ये बात बोल दी, लेकिन फिर भी उसने इस बात को जाहिर नहीं किया कि वो शिविका से रिलेटेड है, कम से कम उन मॉडल्स के सामने तो नहीं, नहीं तो फिर उन लोगों को लगता कि हर्षिता की सिफारिश हुई है और उसे इसलिए ही मेन मॉडल बना दिया गया, जबकि सच इन सब से बिल्कुल अलग था। हर्षिता को उसके टैलेंट और उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर मेन मॉडल का स्लॉट दिया गया था। हर्षिता की बात सुनकर उनमें से एक लड़की करण की तरफ देखकर उसकी तारीफ करते हुए बोली, ही इज़ टू गुड टू बी जस्ट एन असिस्टेंट, इसे तो मॉडलिंग में पक्का ट्राई करना चाहिए। तभी उस लड़की के पीछे खड़ी दूसरी मॉडल ने कहा, यार काश कि ये मेरा पार्टनर बन जाए आज के इवेंट में। तभी एक लड़की ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, क्या यार, तू उस असिस्टेंट को देख रही है? उस तरफ देखना, वो रुद्र सर, वो तो मुझे किसी ग्रीक गॉड की तरह लगते हैं, और उनकी बॉडी देखो कितनी मस्त है, एकदम जॉन इब्राहिम वाली। ये बात सुनकर उस लड़की ने रुद्र और करण दोनों की तरफ देखा और बोली, देखो उन दोनों में कोई भी कंपैरिजन नहीं है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अच्छे हैं। वो सब आपस में बात कर ही रही थी, तभी उन लड़कियों की इंस्ट्रक्टर मेघा वहां पर आई और उसने सारी लड़कियों को आपस में बात करते हुए कहा, क्या कर रही हो तुम सब, बातें बंद करो अपनी, और जो कुछ भी लोगों को बताया गया है तुम सबको अपनी अपनी पोजीशन याद रखनी है, और एक बार जाकर सभी अपनी अपनी ड्रेस पहन कर देख लो, किसी की भी फिटिंग में या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पहले ही बता दो, अभी टाइम है, सब कुछ ऑल्टर हो जाएगा और जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो भी ठीक कर दी जाएगी, लेकिन एंड टाइम पर मुझे कोई भी डिजास्टर नहीं चाहिए। इंस्ट्रक्टर मेघा की बात सुनकर सभी लड़कियों ने हाँ में अपना सिर हिलाया और मेघा ने आगे कहा, मुझे नहीं चाहिए कि किसी की भी ड्रेस में कोई भी कमी हो, या फिर अगर कोई भी चीज़ तुम लोगों की खो गई तो मैं ढूंढ कर नहीं देने वाली, अपना सब कुछ पहले ही अरेंज कर लो। अपनी इंस्ट्रक्टर की बात सुनकर वो लड़कियां एकदम चुप हो गईं और उसकी बात मानते हुए सभी अपने अपने काम में लग गईं, क्योंकि वो सब भी इस इवेंट और अपनी अपनी परफॉर्मेंस को लेकर एक्साइटेड हैं और सब अपना बेस्ट देना चाहती हैं। उन सब लड़कियों के वहां से जाने के बाद इंस्ट्रक्टर मेघा ने हर्षिता को वहां पर रुकते हुए कहा, हर्षिता तुम रुको, मुझे तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम इस परफॉर्मेंस की मेन मॉडल हो इसलिए सारा फोकस तुम पर ही रहेगा और मैं चाहती हूँ कि तुम अपना बेस्ट परफॉर्म करो, इससे तुम्हें आगे और अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ये कंपनी के लिए भी अच्छा होगा। हर्षिता ने चुपचाप इंस्ट्रक्टर की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाया। दूसरी तरफ करण ने वहां पर आते हुए जो कुछ भी पूछा था उसकी बात का जवाब देते हुए रुद्र बोला, नहीं मैं हूं ना यहाँ पर, मैं यहाँ सब कुछ देख रहा हूँ और ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है, थैंक्स करण। इतना बोलते हुए रुद्र ने आगे आते हुए करण के कंधे पर हाथ रखा, तो करण उसकी तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए रुद्र, क्योंकि तुम सब ये कुछ बिल्कुल अपना समझकर कर रहे हो। और अब तो हमारा सुपरवाइजर ही वापस आ गया, लेकिन फिर भी तुमने इतना सीरियस होकर जिम्मेदारी से सारा काम संभाला हुआ है। ये शिविका को भी बहुत अच्छा लगेगा, और वो सच में बहुत लकी है कि उसका तुम्हारे जैसा कोई फ्रेंड है। करण की बात सुनकर रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, लकी तो मैं हूँ जो मुझे शिविका जैसी बेस्ट फ्रेंड मिली है, और वो भी हमेशा इसी तरह से मेरा साथ देती है। तुम्हें पता है हम जब भी मुझे जरूरत होती है, वैसे तुम नहीं जानते क्योंकि तुमने अभी ऑफिस ज्वाइन किया है ना। ये बात बोलते हुए रुद्र के चेहरे पर एक प्राउड स्माइल थी। करण ने बात क्लियर करते हुए कहा, हाँ अभी नहीं, काफी टाइम हो गया मुझे, ऑलमोस्ट 5 मंथ होने वाले हैं। बट तुम अभी वापस आए हो ना, कुछ महीनों पहले ही। रुद्र ने थोड़ा सोचते हुए कहा, तुम भी शायद इतने दिनों में शिविका के काफी क्लोज हो गए हो, है ना। ये बात रुद्र ने बहुत ही नॉर्मल अंदाज में कही, लेकिन करण थोड़ा सा हड़बड़ा गया। उसे लगा शायद वो भी बाकी ऑफिस वाले लोगों की तरह उसकी और शिविका के रिलेशनशिप के बारे में कुछ जान गया है और शक करते हुए ये बात पूछ रहा है। तो करण तुरंत ही उसी तरह हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बस उनका असिस्टेंट हूँ और कुछ भी नहीं। करण ने जैसे सफाई देते हुए ये बात बोली तो रुद्र ने पहले तो कन्फ्यूजन से उसकी तरफ देखा और फिर कहा, अरे तो इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो, और तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे कि तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मैं तो बस यही बोल रहा था कि तुम भी अब सब कुछ जान गए हो ना शिविका के बारे में, उसकी पसंद नापसंद और उसकी फैमिली दोस्त सब। और मैंने देखा कि तुम काव्या की भी काफी ज्यादा क्लोज हो, और शिविका काव्या को लेकर हर किसी पर तो भरोसा नहीं करती, लेकिन उसने तुम पर किया है तो जरूर तुम उस लायक होगे।
रुद्र ने अपनी बात पूरी एक्सप्लेन करते हुए बोली तो उसकी बात का मतलब जानकर करण ने राहत की सांस ली और मन ही मन ऊपर वाले को थैंक यू बोला, और फिर रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, हाँ काव्या वो तो बहुत प्यारी बच्ची है, और वो खुद भी मुझे बहुत पसंद करती है, और इतनी प्यारी बच्ची को भला कौन पसंद नहीं करेगा। वो ऑफिस आई थी तब मैं उससे मिला था। रुद्र ने उसकी बात का जवाब दिया, बट मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं करती, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है उसकी मम्मा उसे इम्पोर्टेंस नहीं देती जब वो मेरे साथ होती है। इतना बोलकर रुद्र हंसने लगा तो करण ने कहा, नहीं तुम बुरा मत मानना, वो बस छोटी सी बच्ची है, उसे अभी इतनी समझ नहीं है। रुद्र ने भी हंसते हुए कहा, हाँ मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन तुम बताओ तुमने कैसे इम्प्रेस कर लिया उसे, शायद इसीलिए शिविका भी अब तुमसे और तुम्हारे काम से इतनी इम्प्रेस है। रुद्र ने ये बात बहुत ही मजाकिया अंदाज में बोली, लेकिन करण को पता नहीं क्यों थोड़ा सा बुरा फील हुआ और उसने तुरंत ही कहा, नहीं ऐसा नहीं है, इस वजह से नहीं, वो मैं अपने काम में भी अच्छा हूँ, कम से कम बाकी सब तो ऐसा कहते हैं। करण की ऐसी बात सुनकर रुद्र समझ गया कि शायद उसे बुरा लग गया है, इसलिए वो बात संभालते हुए बोला, ओ सॉरी मैं तुम्हें ऑफेंड नहीं करना चाहता था, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। वैसे तुम्हें पता है क्या शिविका अब तक यहाँ क्यों नहीं आई? रुद्र ने ये बात इस तरह पूछी क्योंकि उसे पता है कि वो शिविका का पर्सनल असिस्टेंट है, तो उसे शिविका के पूरे शेड्यूल और टाइम टेबल के बारे में पता होता होगा, लेकिन करण को खुद भी इस बारे में पता नहीं है, इसलिए उसने कहा, नहीं अभी तक तो नहीं आई है मैम, और मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। रुद्र ने इस बात पर उसकी तरफ देखते हुए कहा, बट तुम तो उसके पर्सनल असिस्टेंट हो और तुम्हें भी नहीं पता, और अभी बोल रहे थे कि तुम अपने काम में अच्छे हो। रुद्र ने उसकी ही बात पर बात करते हुए ये बोला तो करण को लगा कि वो उसे ताना मार रहा है, और इस पर करण का मुंह बन गया और उसने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा, ये उनका यहाँ पर आना पर्सनल लाइफ में आता है, और ये चीज़ें शेड्यूल में नहीं होती ना, कि मैम कितने बजे कहाँ पर आएंगी, उनके ऑफिस आने के बाद से जो उनका शेड्यूल होता है वो मुझे पता होता है। करण ने एकदम सीरियस टोन में बोलते हुए अपनी बात क्लियर की, और ये बोलते हुए वो काफ़ी प्रोफेशनल लग रहा है। उसकी बात समझते हुए रुद्र ने अपना सिर हिलाकर कहा, ओके कोई बात नहीं, रहने दो तुम, मैं खुद ही पता कर लूँगा कि शिविका कहाँ रह गई। इतना बोलकर रुद्र ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और शिविका का नंबर डायल करने लगा। तभी एक तरफ से किसी के तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आई तो करण ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, तुम कॉल कंटिन्यू करो, मैं देखकर आता हूँ वहाँ पर क्या हुआ।